अरमान ने अपने बॉडीगार्ड तेजा को कॉल किया और सब कुछ समझा दिया। तेजा अरमान का सबसे खतरनाक आदमी था। अरमान के केवल एक इशारे से वो किसी की भी जान ले लेता था। ज़ोया को अरहम से अलग करने के लिए अरमान अपना प्लान तैयार कर चुका था। माफ़ी चाहता हूँ अरहम यार, पर तुझे अपने दोस्त के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। ऐसा सोचते हुए उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। कल ज़ोया और अरहम की हल्दी की रस्म थी। अरमान ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, इसीलिए अरमान ने ज़ोया और अरहम की हल्दी की रस्म एक ही हॉल में रखी थी। दोनों की हल्दी साथ होगी, उसने निर्णय लिया था, और उसे आज हल्दी में ज़ोया को उसका बेस्ट गिफ्ट भी देना था। आज ज़ोया की हल्दी की रस्म थी। एक तरफ अरहम की हल्दी होनी थी तो दूसरी ओर ज़ोया की, इसीलिए हॉल के बीच में एक खूबसूरत चाली के कपड़े से आधा भाग कर दिया गया था। एक ओर लड़की वाले थे और दूसरी ओर लड़के वाले। अरहम पीले रंग के कुर्ते में बेहद डैशिंग लग रहा था। अगले ही पल सीढ़ियों से उतरती हुई ज़ोया आ रही थी। पीले गाउन में पीले फूलों की ज्वेलरी पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही ज़ोया फंक्शन में आई, अरमान जैसे अपनी पलक झपकना ही भूल गया था। ज़ोया आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अरमान एक टक ज़ोया को ही निहार रहा था। साथ ही अरहम भी अपनी जगह से खड़ा हो गया था और धीरे धीरे ज़ोया के पास पहुंचा और सीढ़ियों से उतरती ज़ोया को अपना हाथ दिया। ज़ोया ने भी खुशी खुशी अरहम का हाथ थाम लिया। अरमान का गुस्से से बुरा हाल था। अरहम का यूं ज़ोया को छूना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहरहाल थोड़ी ही देर में बेहद अच्छे माहौल में हंसी मजाक ढोलबाजे के साथ हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। तभी वहां अचानक पुलिस को आया देखकर सभी चौंक गए। पुलिस वाले सीधा अरमान के पास गए और उसके पास काफी धीरे से कुछ बात की। बदले में अरमान ने भी उनसे कुछ कहा और पुलिस वाले वहां से चले गए। तभी अरहम और ज़ोया अरमान के पास आए। दोनों एक साथ पूछने लगे, अरमान क्या हुआ, ये पुलिस वाले यहां क्यों आए थे? अरहम ने पूछा। क्या हुआ सर, सब ठीक है ना? अचानक पुलिस यहां पर क्यों आई थी? ज़ोया ने पूछा। इससे पहले कि अरमान कुछ जवाब देता, पीछे से एक आवाज आई। मैं बताता हूं, रहीम खान की आवाज पर वे तीनों पीछे की ओर पलटे। ज़ोया चौंक कर बोली, आप बताएंगे रहीम बाबा, हुआ क्या है, क्या बात है? बताता हूँ बेटा जी, आप थोड़ा धैर्य रखिए। वो बेटा जी, अरमान साहब ने मेरी गवाही के बिला पर आपका केस गुप्त रूप से सीबीआई को सौंप दिया था, क्योंकि आपके मामा ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, तो उस हादसे का इकलौता गवाह मैं था। तो मेरी गवाही के बिला पर आपके मामा को फांसी की सजा मिल गई थी। फांसी की सजा का सुनकर उसने अपने सब गुनाह कबूल कर लिए थे, और उसके बाद जब पुलिस वाले उसको जेल में ले जा रहे थे, तब उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने उस पर गोलियां चलाईं और उसका एनकाउंटर कर दिया। अरमान साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया है बेटा जी, और अब आपकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ आपके नाम कर दिया गया है। जब रहीम ये सब बता रहा था, तब ज़ोया की माँ सारी बातें सुन लेती है और चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी बीच हल्दी की रस्म भी नहीं हो पाती है। सारा प्रोग्राम अब खराब हो चुका था। दूसरी ओर ज़ोया की अम्मी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, उन्हें कोई आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर सब चेकअप करने के बाद ज़ोया से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है मिस ज़ोया, अभी हमने आपकी मदर को शांत करने के लिए नींद का इंजेक्शन दिया है, और बाकी हम उनके होश में आने के बाद ही बता पाएंगे। ज़ोया बेचैनी से इधर उधर हॉस्पिटल की लॉबी में टहल रही थी। अरमान और अरहम ज़ोया को सांत्वना देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच डॉक्टर ने कुछ दवाइयों की पर्ची अरहम को थमाई और दवाई लाने को कहा। अरहम अरमान से ज़ोया का ख्याल रखने को कहकर दवाई लेने चला जाता है। तभी अरमान एक झटके से ज़ोया के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना ज़ोया, सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उन लोगों को अरेस्ट कराता, ना ये सब होता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरमान ज़ोया के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। तभी ज़ोया ने अरमान के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, सर प्लीज, आपने तो मेरी कितनी बड़ी मदद की है, आप नहीं जानते, आपने मेरे भाइयों के कातिल को सजा दिलवाई, हमें हमारा खोया हुआ मान सम्मान, हमारी हवेली वापस दिलवाई, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, मिस ज़ोया, एक गुड न्यूज है, आपकी माँ को होश आ गया है और वो अब बिल्कुल ठीक है, अब उनका पागलपन भी ठीक हो गया है, आपके गुनाहगारों को सजा मिल चुकी है, और शायद इसी वजह से आपकी माँ की नस जो ब्लॉक हो गई थी वो अब ठीक हो चुकी है, बस अब आपका प्यार ही उन्हें जिंदा रखेगा। ज़ोया की माँ को होश आ जाता है और वे दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर बेतहाशा रोती हैं। अरमान अरहम, उनकी आंखें भी झलक उठती हैं। वो दृश्य ही कुछ ऐसा था, वहां खड़े हर इंसान की आंखों में आंसू थे। रोजी को बहुत पछतावा हो रहा था अपनी सोच पर। ज़ोया के साथ जो हुआ था वो सुनने के बाद उसे ज़ोया से अब केवल हमदर्दी थी, किसी तरह का कोई द्वेष उसके मन में नहीं था। अब सब थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था, उसकी माँ सो चुकी थी, सब बाहर आ गए थे। तभी अचानक ज़ोया सबके सामने अरमान के गले लग जाती है और बोलती है, आपका बेहद शुक्रिया सर, आपने सब ठीक कर दिया, मैंने माँ मुझे लौटा दी, मेरे गुनाहगारों को सजा दिलवाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तभी अरहम उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, हाँ अरमान, मैं भी तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। जोया अरहम की आवाज़ सुनकर अरमान से अलग हो जाती है। अरमान, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, पता नहीं मैं क्यों नहीं सोच पाया, अरहम ने कहा। बहरहाल मेरे दोस्त, तूने सब ठीक कर दिया, यू आर ग्रेट यार, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, तुम दोनों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, अरमान ने कहा। अब तुम लोग ये सब छोड़ो और सब कुछ भूलकर अपनी शादी की तैयारी करो। अरहम को आज जोया का यूं अरमान के गले लगना न जाने क्यों बेहद बुरा लगा था, पर वो कुछ कह नहीं पाया था, उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था।